ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सुबह चर्चा कर ऐसे हर एक जो चौस अंग है उसके लिए शास्त्र से उल्लेख करें, ऐसा उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। और इसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि हर एक जो अंग है तो अंग जो भगवान के जो शुद्ध भक्त जो इसका अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से जो पालन करते हैं उसके आचार्य गण ने लिख के रखा हुआ है और यहां वो साधकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसको अगर हम ऐसे ही करेंगे बिना कोई भाव से, केवल प्रक्रिया करने से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका अंकुर जागृत हो जाएगा। और साथ साथ ऋग गोस्वामी इस शास्त्र का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो यहां आगे वो कहते हैं कि द्वारका में वास ना, द्वारका वृंदावन ऐसे जो भगवान के जो दिव्य धाम है वहां वास करने के लिए प्रयास करना। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर कोई एक साल अगर 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए भी वास करेंगे तो वो वहां के धाम में चले जाते। प्रभुपाद जी अपने शिष्य से हमेशा कहते थे हरि गुरु प्रभु जब बड़े वृंदावन में आए भारत बस आ गए थे तब वो कई दिन के बाद प्रभुपाद जी से मिलने आए थे और उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा वृंदावन। उन्होंने किताब भी लिखा हुआ है वृंदावन डेज करके। और जब आय गुरुद्व देश चले गए और क्योंकि उनके बद्ध अवस्था के कारण वो भक्ति से भी पी लेते थे तो बना सेवा करना फिर कई दिन के बाद छोड़ देना। लेकिन बार बार प्रभुपाद जी उनको यही कहते देखो आपने वृंदावन आए हो वृंदावन के अलग अलग अब मंदिर गए हो और इसके कारण क्या होगा आपको निश्चित रूप से कृष्ण की जो कृपा है वो प्राप्त होगी। तो किस उल्लेख प्रभुपाद जी कहते कौन सा प्रमाण था और यही था कि किस समय कहा गया कि अगर कोई भगवान में आ जाए अगर केवल निश्चय कर लेता है। आगे रूप गोस्वामी इसके कहते हैं अगर कोई सोचता है कि मुझे रहना है तो इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि आप सही में वहां वास कर रहे हो। कभी कभी हम देखते हैं कि शास्त्र में अतिशयोक्ति दिखाई देती है कहते कहते बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट ज्यादा अतिशयोक्ति है जैसे रथ यात्रा के पीछे चला जाए शास्त्र कहते अगर अभी रथ के पीछे चल जाए तो वैकुंठ को प्राप्त कर लेते। तो कोई कह सकता है कि उसने तो प्रज्ञा से नहीं किया है कोई भावना नहीं थी ऐसे ही जा रहा था उसको कैसे वैकुंठ प्राप्त होगा। उसके दो विवरण दिया एक विवरण ऐसा है कि भक्ति की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है आप जानकर करो या अनजाने में करो एक है और दूसरा है हिमाचार्य गण कहे कि ऐसे कोई दुकानदार होता हो अपना जो माल बेचने के लिए वो अलग अलग प्रकार कलरफुल एडवर्टाइजमेंट करता है ग्राहकों को अपने प्रति आकर्षित करने हर डिस्काउंट करता रहता है। अगर कोई व्यापारी हमेशा डिस्काउंट दे तो हानि हो जाएगा लेकिन उससे क्या कर रहा है ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है जो ग्राहक है उसके आ जाएंगे डिस्काउंट देकर कलरफुल एडवर्टाइजमेंट कर उस दुकान में आ जाएंगे यानी कि वो नया कस्टमर आ कर रहा है। लेकिन उसके जो पहले पार्टनर है उसके जो दैनंद जो ग्राहक है जिनका उस दुकानदार के प्रति विश्वास है या डिस्काउंट दो या डिस्काउंट दो वो क्या करता रहेगा वो आगे रहेगा। इससे जो अतिशयोक्ति जैसे दिखाई देती है जो नियमित रूप से भगवान की सेवा देते उनके लिए कोई अर्धन नहीं दिखाता वो ऐसे उन्होंने डिस्कोल या मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान की सेवा पे। कार्तिक के बारे में वर्णन किया गया है कार्तिक मास विशेष भगवान के लिए प्रिय जो इस मास में कुछ विशेष व्रत धारण करेगा भगवान की सेवा करेगा उसको बहुत लेगा, परंतु जो नियमित रूप से भगवान की सेवा कर रहे हो ऐसे नहीं कि चलो कल आज कार्तिक में करना है तो हमेशा के लिए करते रहते हैं। रूपानी जीव गोस्वामी को जो उल्लेख करते दो प्रकार की, एक सतता भक्ति और एक कदाचित। संतता भक्ति यानी कि जो भक्त हमेशा के 24 घंटे 365 दिन 12 दिन तो भगवान की सेवा में लग जाता है। और वो भी 3 प्रकार के होते हैं। और कदाचित की भक्ति यानी कदाचित कभी उसको कहा जाता है उत्सव मूर्ति। वो केवल जब भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं तब धोती कुर्ता के तिलक लगाएंगे, डांसर के प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद के फिर सीधा तो अगले साल उनको दे। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे कोई कदाचित की कभी कभी करता होगा भक्ति। और उसमें भी 3 प्रकार की होती है। कदाचित भक्ति होती है कि अपने स्वरूप भक्ति होता है कि मैं भगवान का दास हूं, ये मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करनी है। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से वैसे महत्वपूर्ण कोई उत्सव है उस उत्सव रहने के लिए आ जाता है, जन्माष्टमी में आ जाता। जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति है वो हर से मनाते केवल एकादशी मना लेते बस, क्योंकि जानते एकादशी करना चाहिए, बाकी दिन कुछ नहीं, वही चित्त की भक्ति। जन्माष्टमी में आ जाएंगे, रामनवमी में आ जाएंगे, साल में 2-3 बार आते, वो क्यों? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य मुझे करना चाहिए। और उसे नीचे कदाचित की भक्ति है कि गरीब भास यानी कि उसमें भक्ति का कोई प्रेम गंध नहीं है, भास भक्ति है। तो स्वामी कहते ब्रह्म उसका उल्लेख करते छठे की कहानी में उसका यानी उस तरह आभास भक्ति है जो छाया है, इतना ही भगवान के साथ में संपर्क आ जाएगा तो सारे पाप धुलते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे कभी कभी उनको कहा जाए कि नहीं आप कुछ दवाइयां मत लो, आप ऐसे वातावरण में आ जाओ जहां शुद्ध वातावरण हो, सात्विक वातावरण, आप दवाइयां कुछ नहीं लें, लेकिन वातावरण में आने से ही फर्क पड़ जाता है। उनको अगर कोई डॉक्टर है तो पॉजिटिव हो तो इतना ही कह दे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, बीमार होने पर क्या हो जाता है, बीमारी से नहीं उसकी बीमारी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सकारात्मक शब्द कर, अगर भौतिक दृष्टि से सत्य तो हम सोच सकते कि आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कह रहे हैं। यहां रूप गोस्वामी शास्त्र का उल्लेख कर रहे हैं, प्रति संशय नहीं रखना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए जो कोई यहां कहते हैं नहीं है, अगर ऐसा लगता भी है तो नए कस्टमर भक्ति के लिए जो नए नए कस्टमर चाहिए उनको आप करने के है, और साथ साथ सत्य भी है। और आगे रूप गोस्वामी कहते यावद अर्थ वर्तिता, यानी कि भक्ति में जो हमें जितना चाहिए जितना जरूरी है उतना स्वीकारना चाहिए। 2 आचार्यगण इसका लगा देते। एक आचार्य कहते हैं मुकुंद दास जो कविराज गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने भक्ति रसामृति के ऊपर अपनी टीका लिखी है। तो अगर जितना चाहिए उतना ही स्वीकार करना है। जैसे कि हमारे जो भौतिक रिक्वायरमेंट है, जो भौतिक वस्तु की जरूरी होती है उसको जितना चाहिए उतना स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है, वो तो भक्ति में बाधा नहीं बनती। और प्रॉपर में भक्ति रसामृत कहते हैं जितना उतना ही, लेकिन भक्ति की जो प्रक्रिया है अपने योग्यता के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, अपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी लिखते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया अगर किसी को वैष्णव बहुत तीव्रता से बनना है कम से कम 1 लाख नाम जप करना चाहिए, कम से कम 1 लाख। तो प्रभुपाद जी कहते काफी लोगों के लिए संभव नहीं है, तो ठीक है 16 माला जप करो। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कई लोग 16 माला भी नहीं कर सकते हैं तो अपने आप में नंबर फिक्स कर लो कि मैं 8 माला हर रोज जप करना चाहता हूं। गुरु तो दीक्षा देंगे जब आप 16 माला करोगे, लेकिन अपने आप जितना आपको हो सकता है उतना नंबर फिक्स कर देना चाहिए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। यानी कि भक्ति में हम इसके बारे में बार बार चर्चा किया हुआ है, कृष्ण और कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति है गलतियों को नहीं देखते। कभी कभी हम देखते हैं लोगों को बहुत जल्दी भक्त बनाने के लिए हमें लगता है कि लोग 16 माला करेंगे, 4 नियम करेंगे तो भक्त बन गए, बस फिर उनके पास देखने का नहीं, बस। ऐसे भक्त कहते थे जब कोई मंदिर में आता है उसको पकोड़ा दो तलकर, बाद में उसको तला दो, फर्स्ट यू गिव देम फ्राइड पकोड़ा, देन यू फ्राई देम। नहीं, अगर जबरदस्ती से हमने जैसा स्टैंप मार दिया, सरकार इसमें जाकर अपने स्टैंप मार के लगा तो ले आते हो तो गया, उसको फिर फाइल को देखना ही नहीं। वैसे किसी को पकड़ के लाया, उसको गले में कंटी माला डाल दिया, तिलक लगा दिया, धोती पहना दिया, माला हाथ में दे दिया, 16 माला कल से तो चालू कर देगा 16 माला, तो हम कह देते कि मेरे नाम ही और एक किसने बनाया भक्त फलाना फला डेढ़ में बना। तो ऐसे करने से, क्योंकि जो जबरदस्ती से की जो भक्ति है समाज के प्रभाव के कारण वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इसलिए यहां प्रभुपाद जी इतने अकोमोडेटिंग है, वो कहते कि आप अपना नंबर फिक्स कर दो। और ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे से जब आपकी निष्ठा और कन्विक्शन बढ़ जाएगी आप अपने आप भक्ति में प्रगति करोगे। और एक प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोलने में जो डर लगता है क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है तो बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कभी कभी गलती से किसी के हाथ में 16 माला होती नहीं है, अपना नियमित 16 माला नहीं होगा, तो प्रभुपाद जी कहते फिर कल के दिन कर दो, लेकिन कम से कम आपने जो कल नहीं किया है उसको करो। देखो प्रभुपाद जी कितने दयालु है और रूप गोस्वामी ये हमें देते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ है जितना यथा योग्य उतना ही भक्ति करनी चाहिए और धीरे 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 भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। अगर पहले दिन से निर्जल करने लगेंगे, आते कि मुझे आज से निर्जल करना है, तो भक्ति में वो जो रजोगुण की भक्ति होती है, भागवत में कहा जाता है तीन प्रकार की भक्ति है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण की भक्ति। रजोगुण की भक्ति में क्या होता है, बहुत उत्साह होता है लेकिन धीरज नहीं होता, वो जितने तेजी से आ जाता है। जैसे एक भक्त उदाहरण देते हैं, आपने देखा होगा हम आज दोपहर के समय चर्चा कर रहे थे, कड़ाई में जब आप दाल बनाते हो, दाल को उबालते हो और उसमें तड़का देते हो, और इस्कॉन में ऐसा लोगों को लगता था, भक्तों को जब प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था, उनको लगता था जब तक तेल इतना गर्म करो और तेल गर्म करने के बाद जीरा डालते हो तो उसमें से अग्नि निकलनी चाहिए, तब तड़का यशस्वी होगा, ऐसा भक्तगण सोचते थे। तो ऐसे बहुत एक्सपर्ट कुक थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने फिनोमेना में देखा, ऐसा एक अनुभव किया, छोटी सी कढ़ाई होती है खास करके तड़का के लिए बनाया जाता है, उसमें तेल गरम करो या घी गरम करो, जैसे ही जीरा डालो तो क्या होता है उसमें से अग्नि निकलती है। कितने देर तक निकलती है, थोड़े समय के लिए, 30 सेकेंड्स। तो ऐसे उत्साही भक्त होते हैं, तो कढ़ाई का जो अग्नि होता है उतने ही देर तक रहते हैं और बाद में उड़ के चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं उनका भक्त। इसलिए यथा योग्य ने की धीरे धीरे प्रगति करना, इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे करने से क्या होगा, निश्चित रूप से वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और एकादशी का व्रत पालन करना, फिर से जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, शुद्ध भक्त चरण रेणी भजन अनुकूल, तो शरणागति का प्रथम लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि जो भी मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है मैं उसको स्वीकार करता हूं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त का जो भजन है उसको पढ़कर देखना चाहिए क्या क्या भक्ति विनोद ठाकुर अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए कर रहे हैं और ऐसे करने से निश्चित रूप से हम प्रगति करते हैं। यहां एकादशी है और भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं एकादशी है ये भक्ति की माता है। एकादशी इज द मदर ऑफ डिवोशन। तो जो एकादशी व्रत पालन कर लेता है, हम देखते हैं सारे वैदिक धर्म में राजा से लेकर प्रजा तक हर एक व्यक्ति एकादशी करते थे। तो स्वाभाविक था जिस समय द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को कहा कि जाकर देखो कौन अच्छा और बुरा व्यक्ति है आपके राज्य में। दुर्योधन को कहा था कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है देखकर आ, और युधिष्ठिर को कहा गया देखकर आओ कौन सबसे बुरा व्यक्ति है। दोनों को विरुद्ध सेवा दी गई क्योंकि युधिष्ठिर के पास ऐसी वृत्ति नहीं थी कि वो दूसरों की गलती देख सकते थे और दुर्योधन के पास ऐसी वृत्ति नहीं थी कि वो दूसरों का अच्छा नहीं देख सकता था। तो वापस आ गया कहने लगा ऐसा कोई भी अच्छा नहीं मेरे अलावा, मैं सबसे अच्छा हूं। और युधिष्ठिर देख रहे थे कौन बुरा है, एक भी व्यक्ति उसको नहीं मिला जो बुरा है। और जैसे ही अपने गुरुकुल आ रहे थे वापस, तब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कुएं से पानी निकल रहा था। युधिष्ठिर जी जाकर बड़े क्रोध से उसको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, अब पानी क्यों निकल रहे हो। पानी निकलना कोई पाप नहीं है, कुएं से पानी निकलना कोई पाप है, लेकिन वो दिन एकादशी था तो एकादशी के दिन कोई कुएं के नजदीक भी नहीं जाता था क्योंकि सब लोग निर्जल करते थे दीन को छोड़कर। यानी कि एकादशी का व्रत पालन करना स्वाभाविक था वैदिक शास्त्र में। आज लोगों को एकादशी कुछ मालूम ही नहीं होता, केवल फ्राइडे मालूम होता है, उस दिन नया पिक्चर लगता है, वो दिन मालूम होता है, लेकिन एकादशी की जानकारी नहीं होती है। तो यहां रूप गोस्वामी कहते हैं एकादशी पालन करने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एकादशी का पालन कर लेता है तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से यही मांगा था क्योंकि एक स्मार्त विधि है। स्मार्त विधि में कहा जाता है कि जो पति अगर को जय कर रहा है फिर स्त्री को करने की कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु की माता जब तक जगन्नाथ मिश्रा थे तब तक वो एकादशी का व्रत पालन नहीं कर रही थी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने माता से पूछा था कि आपको एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, यही मैं आपसे मांगता हूं। फिर वो एकादशी का व्रत पालन करने लगी। और प्रभुपाद जी लिखते एकादशी व्रत पालन इसलिए है ताकि उस दिन कम खाना चाहिए और साथ साथ भगवान के चिंतन के लिए समय ज्यादा देना चाहिए। अगर भगवान का चिंतन ज्यादा न हो रहा है तो फिर उपवास करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में बाग बाजार में दो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे पड़े हुए थे तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चक्कर लगा रहे थे आ गए देखने के लिए। उन्होंने देखा दो ब्रह्मचर्य ऐसे पड़े, उन्होंने पूछा क्या हो गया। अरे गुरुदेव उपवास कर रहे हैं, एकादशी है इसलिए निर्जल कर रहे। सरस्वती ठाकुर ने कहा किसने कहा निर्जल करने के लिए। तो कहने लगे क्योंकि एकादशी का जो प्रसाद हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। कई हमारे भक्त है मंदिर में उनको साबुदाना खिचड़ी अच्छा नहीं लगता इसलिए वो निर्जल करते हैं, तो खाने में मजा नहीं आता। तो वैसे वो लोग एकादशी व्रत इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वहां का जो एकादशी का जो फलार है उनको अच्छा नहीं लगता था। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे ठीक नहीं, इससे अच्छा अन्न खाओ लेकिन सेवा करो। देखो उन्होंने कह रही थी कि अब अन्न खाओ लेकिन सेवा करो, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको अन्न खाना चाहिए, लेकिन खास उन दो भक्तों के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं एकादशी के साथ में कृष्ण का चिंतन बढ़ना चाहिए। हम उपवास कर रहे हैं लेकिन प्रजल्प कर रहे हैं तो बड़ा फीस्ट कर रहे हैं प्रजल्प का, उससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है। और रूप गोस्वामी कहते आगे अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, गाय की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, वो भी एक भक्ति का अंग है। कोई कह सकता है कि यह कैसा है, बाहर के लोग हमेशा भारतीयों की निंदा करते हैं कि ये लोग हर चीज में पूजा करते, पत्थर की पूजा करते, अपनी साइकिल की भी पूजा करते, सबकी पूजा करते, ये क्या है, पेड़ों की पूजा करते, गाय की पूजा करते। बाहर के लोग भारतीय लोगों को कैसा जानते, जहां प्राणियों की पूजा होती है, हनुमान को देखकर वो कहते थे बंदरों की पूजा होती है, ऐसा देश है। लेकिन यहां हम देखते हैं रूप गोस्वामी कहते क्योंकि ये सारे भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण अश्वत्थ वृक्ष ने भगवान का स्मरण दिलाता है, वो पवित्र है। पहले तो ऐसा था कि हर एक वैष्णव जो भातृ वृक्ष होता है उसके फल को अपने गले में डालते थे, कंठी अपने गले में डालते थे, उस प्रकार से वो तुलसी की पूजा करते थे और अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते थे। एक सिद्धांत यह है कि वैदिक संस्कृति में शक्ति कहां से आती है लोग जानते हैं, शक्ति का दुरुपयोग किया नहीं जाता। अगर शक्ति को अगर हम भोग के लिए लगाएंगे फिर शक्तिमान कभी हम भूल जाते हैं। इसलिए दक्षिण अमेरिका में एक बार ऐसे कई लोग गए थे, वहां के एक व्यक्ति कह रहे थे देखो जब क्रिश्चियन लोग हमारे देश में आ गए वो सोचते थे कि हम लोग बहुत कम हैं, हम अनसिविलाइज्ड है, हम असभ्य है। क्यों असभ्य है, क्योंकि हम वनों की पूजा करते थे, हमारे जानवरों की पूजा करते थे, हम प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन ये लोग आने के बाद हमको इन्होंने सिखाया भगवान को कहां देखना चाहिए, और उसके बाद देखो क्या परिणाम हो गया कि सारे वन नाश हो गए, प्राणियों की हत्या होने लगी। यहां तक कि कई लोग ऐसा कहने लगे कि जो स्त्री है वो तो केवल भोग लेने के लिए मशीन है और उसमें भी आत्मा नहीं है। इसलिए यहां जैसे हम कल चर्चा करे थे घरों को भी भगवान के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि शक्ति को देखना कैसे शक्ति शक्तिमान से संबंधित है, तो फिर उस समय हम उसका दुरुपयोग नहीं करते। जब प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका में गए थे भक्तगण कई वस्तुओं को पैर से लात मारते थे, झाड़ू को पैर से उठाना और जो आसन है उसको पैर से स्पर्श करना, या टाइपराइटर है उसको अगर हिलाना हो उसको पैर से हिलाना, या कपड़े साफ करते समय बकेट में अपना पैर डालना और साफरन के ऊपर जोर जोर से पैर से मारना, तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज नॉट गुड, ये कृष्ण की एनर्जी है। तो उनको समझ में नहीं क्या है, हर चीज को प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण का है, कृष्ण का है। जो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे फिर वस्तु को कैसे ठीक से देखभाल कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सीखा है कि कैसे हर एक वस्तु को सम्मान करना चाहिए। और खास करके जो तुलसी है, अश्वत्थ वृक्ष है, गाय है, उनकी पूजा करें। जो जीव गोस्वामी कहते हैं जिस समय हम कभी गाय को देखते हैं तो गाय को घास खिलाना चाहिए, उसको जाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उसको खुजाना चाहिए प्रेम से, तो इससे गाय बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि गाय भगवान को प्रिय होने के कारण भगवान के प्रति जो साक्य भाव वात्सल्य भाव है गाय की सेवा करने से प्रकट हो जाती है। एक बार हमारे एक सन्यासी कह रहे थे एक भक्त को, वो बहुत बड़े प्रचारक थे, उनको कहने लगे आपने कभी गाय की सेवा की है, उन्होंने कहा नहीं कभी नहीं किया। वो कहने लगे ठीक है आप कितना ही बड़े प्रचारक क्यों हो, जब तक गाय की सेवा नहीं करोगे तब तक गोलोक नहीं जाओगे, क्योंकि गोलोक में क्या है केवल गाय है। मेठा उधर उनके सामने और उनको कह रहे थे कि जब तक गाय की सेवा नहीं होगी यानी कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथ से गाय की सेवा होनी चाहिए। एक अविभाज्य अंग है भक्ति का। हम प्रचार करते हैं परंतु गाय की सेवा न होती हो फिर उसमें कुछ कम है। ऐसी गाय की सेवा करने से हम गोपाल को बहुत निकट के बन जाते हैं। और रूप गोस्वामी आगे कहते कि जो अभक्त है उनका संग त्याग करना। और श्रील प्रभुपाद जी कहते दो प्रकार के अभक्त होते हैं। एक प्रकार का अभक्त यह है जो नास्तिक है, जो भगवान के जो स्वामित्व है उसको स्वीकार नहीं करता। और दूसरे प्रकार के अभक्त है जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्त ने पूछा था वैष्णव का आचार क्या है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वैष्णव का आचार यही है कि उसको अभक्तों का संग त्यागना चाहिए, यही वैष्णव आचार। और रूप गोस्वामी अगस्त संहिता से कहते हैं अगर आपके लिए अवकाश हो, कैसा अवकाश है कि एक तो अग्नि के बीच में रहना हो, अग्नि लगी हुई है उसमें रहना हो या भक्तों का संग करना हो, तो अगस्त समित में कहा जाता है कि आपको अग्नि में रहने का प्रसन्न करना चाहिए। इसे शंकराचार्य कहते हैं खास करके नास्तिक लोगों के प्रति। नास्तिक लोगों का भी मंदिर होता है, वो खास विशिष्ट एक कम्युनिटी के बारे में कहते हैं। उनको पूछा गया अगर आपके पीछे मधुमक्ख हत्ती भाग रहा है, पागल हत्ती भाग रहा है और आपको आश्रय लेने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल मंदिर है, विष्णु मंदिर नहीं या कोई वैदिक देवी देवताओं का मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा ही कल्पना से बनाई गई मंदिर है, जो ऐसा कोई कम्युनिटी है वहां वहां पूजा करते हैं, तो उनको पूछा गया तो क्या अगर मधुमक्ख हत्ती हो या मंदिर है किसको आपको आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वो कहते हैं अच्छा मधुमक्ख हत्ती के नीचे चलेगा, उसके पीछे उसके नीचे जाकर मरना अच्छा है परंतु वो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां अभक्तों का बहुत बड़ा झुंड होता है। और प्रभुपाद जी कहते आगे कहते जो मायावादी गण है वो भी अभक्त है, क्योंकि उनके संग में जाने से क्या होगा कृष्ण के प्रति हमारी जो वृत्ति है प्रेम करने की वो नाश हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते जो देवी देवताओं के जो उपासक है ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। हमेशा लोग इस्कॉन की निंदा करते कि आप ऐसा कैसे कहते हो, सब लोग तो देव है उनकी भी पूजा होनी चाहिए, ये ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि उनको नीचा मानना। यहां श्री रूप गोस्वामी कहते जो देवी देवताओं के उपासक है वो जाते क्यों देवी देवताओं के पास, इसी कारण के लिए जाते हैं कुछ मांगने के लिए जाते रहते हैं। ये सबका अनुभव है जिसमें साधना भक्ति में लगा है, आप किसी भी सबसे ज्यादा भीड़ जो मंदिर है देवी देवताओं का उस मंदिर के बाहर चले जाओ, आप वहां का जो वातावरण है उसको देखकर समझ सकते हो, उधर इंटेंस भौतिक इच्छाओं को प्रकट किया जाता है। जितना स्टॉक मार्केट में जैसे लोग क्या होते हैं लोभ का तीव्र जो इच्छा है वो उसको हम देख सकते हैं कि पैसे पैसे के पीछे वो स्क्रीन को देखते रहते हैं, अपने बाल को खींचते रहते हैं, सूटकेस को फेंकते रहते हैं क्योंकि शेयर बदलता रहता है, बहुत उद्रेकित रहते हैं। वैसे जहां सबसे ज्यादा भीड़ है देवी देवताओं के मंदिर में जाकर देखो, आपको तुरंत अनुभव आ सकता है क्योंकि वहां वो अपने इच्छाओं को प्रकट करने लगते हैं, कॉम्पिटिशन चलता है कि हे मुझे ये वर दो मुझे वो वर दो, धनम देवी जनम देवी पुत्रम देवी, देवी का इतना बड़ा लिस्ट रहता है, तो वहां भौतिक इच्छाओं को प्रकट करने का वो स्थान है। इसलिए ऐसी देवी देवताओं को उपासक है वो भी नॉन डिवोटी, वो भी अभक्त है। रूप गोस्वामी कहते हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि देवी देवता का बाद है वो खराब है। इसलिए आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि देवी देवताओं को उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। गलती इसमें हो जाती है, रुद्र गोस्वामी कह रहे कि देवी देवताओं के उपासक के संग में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देवी देवताओं की निंदा करनी चाहिए, ये दोनों अलग हैं। तुरंत रुद्र गोस्वामी कहते हैं कि देवी देवताओं की निंदा करना ये वैष्णव अपराध है। कभी कभी हमें लगता है जो तिलक लगाया हुआ जो वैष्णव है वही वैष्णव है और देवी देवता वैष्णव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देवी देवतागण भगवान के भक्त ही, वो हरि कृष्ण को विष्णु को स्वीकार करते हैं, उनकी निंदा करना एक अपराध है। परंतु जो देवी देवताओं के जो उपासक है, भौतिक इच्छाओं से चले जाते हैं, वो भी अवैष्णव के रूप में गिने जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अगर घट सर्प सांप के साथ में रहना उचित है लेकिन अवैष्णव के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो प्रश्न ऐसा होता है कि हमारा जो कर्म है, कोई कहेगा तो हम तो गृहस्थी है साथ हमेशा उनके साथ हमें संग करना पड़ता था, हमारा क्या होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बार बार कि आपको उनका संग लेना नहीं चाहिए बल्कि उनको देना चाहिए। पद्म पत्र इवामस कि कमल के फूल के समान रहना होगा। अगर हमने ऐसा ही इसका पालन किया एज इट इज बिना जानकर तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम गलतियां कर लेंगे। जैसे एक शिष्य ने अपने गुरु से सुना कि भगवान सब जगह में और भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो शिष्य ने सोचा कि चलो ये जो सिद्धांत है इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। वो ऐसे जा रहा था और सामने से एक मदमत हत्ती आ रही थी और उसका तस्कर उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो शिष्य उसके सामने आ गया और तस्कर कह रहा था हटो यहां से पागल हत्ती है आपको मार देगी। उसने कहा नहीं, उसमें भी भगवान है मेरे भी भगवान है, तो भगवान उसको समझाएंगे कि मैं सामने से आ रहा हूं, हाथी को समझाएंगे भगवान। तो मदमत हाथी ने उसको कुचलना नहीं दिया बल्कि उसको उठाकर फेंक दिया। तो बड़े गुस्से से गुरु के पास आ गया और कहने लगा आपने कहा था कि सब में भगवान है, भगवान उसको मार्गदर्शन देंगे। तो गुरु ने कहा तस्कर ने क्या कहा था आपको हटने के लिए कहा था, तो भी भगवान की बात आपको सुननी चाहिए थी, आपने उसका बात क्यों नहीं सुना। तो वैसे जब हम शास्त्र को एज इट इज लेकर यानी कि मर्म को न जानकर ऐसे ही पालन करने का प्रयास करें तो भी हमारे हाथ से गलतियां हो जाती है। कल से हम कहेंगे अभक्त, यहां से मंदिर के बाहर निकल गया सारे अभक्त, उनका संग नहीं करना। जाकर हम कहेंगे तू तो नास्तिक है, तू तो राक्षस है, तू तो अभक्त है, तो ऐसे निंदा करने से नहीं होगा। उनको बदलने के लिए परिवर्तन करना है, उनको कृष्ण का संग देने का प्रयास करना चाहिए। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं शिष्यादि अनुनु वंदित्वादि त्रयम। यहां हम देखते साधकों के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं लेकिन गुरुओं के लिए भी आदेश दे रहे हैं। ये जानने के लिए गुरु कैसे होने चाहिए, रूप गोस्वामी तीन यहां कहते हैं कि शिष्य को ज्यादा स्वीकार नहीं करना, शिष्यों को ज्यादा स्वीकार नहीं करना, बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाना, और तीसरे बहुत सारे किताबों को नहीं पढ़ना। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर कोई बहुत शिष्यों को स्वीकार कर लेता है फिर गुरु प्रतिष्ठा लाभ उसके चंगुलों में फंस जाएगा। गुरु को परोखना चाहिए शिष्य को, कैसा योग्य है शिष्य बनने के लिए या नहीं। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो गया था रशिया में जब हरे कृष्ण मुनि बढ़ने लगा, हजारों लोग रशियन लोग आने लगे भक्त बनने के लिए। वो क्या करते थे रशियन, कई जो इतने प्रमाणिक नहीं थे, वो जैसे ही कोई अगर गुरु एयरपोर्ट में आ गए उनके कहते थे मुझे भिक्षा चाहिए, और कई लोगों ने उनको भिक्षा दे दिया। फिर दूसरे गुरु आते थे फिर उनसे भी भिक्षा लेते थे, उनको भिक्षा चाहिए, यानी कि वो एक ही साथ दो दो तीन तीन गुरु से भिक्षा ले रहे थे, यानी कि उनके अंदर कोई प्रमाणित तीव्र इच्छा नहीं है प्रगति करने के लिए, केवल दीक्षा लेना चाहिए इसलिए दीक्षा लेते हैं, केवल वो जो प्रक्रिया उसे गुजरने के लिए लगता है कि अच्छा यज्ञ में बैठना चाहिए, माला लेना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी के पास आ जाए कोई व्यक्ति, उन्होंने जबरदस्ती से मांगा मुझे दीक्षा दे दीक्षा दे, प्रभुपाद जानते थे कि ये योग्य नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहा था। प्रभुपाद जी ने सोचा ठीक है उसको कम से कम कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, उनको उन्होंने दीक्षा दे दी और अगले दिन चला गया। प्रभुपाद जी के भक्त ने आकर कहा प्रभुपाद जी छोड़कर चला गया, वो तो दीक्षित था। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने उसको दीक्षा दिया ही नहीं, आपको लग रहा था इसको मैंने दीक्षा दिया लेकिन मैंने उसको दीक्षा दिया ही नहीं, केवल माला देना और माला स्वीकार करना दीक्षा नहीं, वो तो बिगिनिंग है। जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेने से आप निष्णात नहीं बनते, वहां जाकर पढ़ाई करना होगा। तो यहां रूप गोस्वामी कहते हैं गुरु को परोखना चाहिए और शिष्य को भी परोखना चाहिए, गुरु योग्य है या शिष्य योग्य है, और इतने शिष्यों का स्वीकार करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रगति हो जाए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय जहां कृष्ण भक्ति को बहुत बढ़ाना है, अगर शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी कभी गुरु इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, किसके लिए उल्लंघन करने उद्देश्य नहीं बल्कि और ऊंचा आदर्श पालन करने के लिए, संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। अगर आप इसको अपने बच्चों के समान, अपने पति के या पत्नी के समान जैसे उनका देखभाल करते हो, ऐसी अगर सेवा होगी तो ये मंदिर बनाओगे। अगर मंदिर के मंदिर बनाने से कृष्ण की सेवा बंद हो जाती है, श्रवण कीर्तन बंद हो जाता है, फिर मंदिर का कोई लाभ नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी चेतावनी देते हैं और प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कोई आकर कहेगा कि आप मंदिर बनाओ, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वे खुद होकर मंदिर नहीं बनाए बल्कि कोई ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए, उन्होंने कहा चलो आप हमारे वो आप मंदिर बनाओ हम आपको पैसा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी ने कहा आप ही मंदिर बनाओ, हम हमारे भगवान को लेकर आएंगे, हम उनको वहां प्रतिष्ठापित करेंगे और हम क्या करते रहेंगे घूमते रहेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे करते थे, एक मंदिर बना लेते थे, जैसे फिशर मैंशन डिट्रॉइट में उन्होंने मंदिर खरीद लिया और मंदिर खरीदने के बाद प्रभुपाद जी चलने लगे, बोलेंगे देखो मंदिर हमने खरीदी किया लेकिन हम रहते नहीं है क्योंकि हमको शाप है। नारद मुनि जैसे बहुत सारे माता पिताओं ने हमको शाप दिया कि एक मंदिर में नहीं रह सकते। और तीसरा है शिष्यों के लिए, रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत सारे ग्रंथों को इकट्ठा करना। चैतन्य चरितामृत के तत्परिण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी एक साधक का एक रोग है कि जहां भी देखा उस किताब को इकट्ठा करो, जो भी आध्यात्मिक जैसे लगा उसको इकट्ठा करो। हम किसी के घर में गए थे, उनके घर में उनका जो डुप्लेक्स फ्लैट है और उसका जो ऊपर का कमरा है सारे वेद है, चार वेद 18 पुराण 108 उपनिषद सबके सब है, और मैंने उनसे बढ़कर और किसी कंफ्यूज व्यक्ति को देखा ही नहीं है। हमेशा आकर ऐसे प्रश्न करते हैं। और यहां कहा जाता है शास्त्र में रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य को तपन मिश्रा से मिले थे उनसे उन्होंने कहा था बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त ब्रह्म है। बहुत शास्त्र का अध्ययन करने से क्या होगा, चित्त ब्रह्म हो जाता है। साध्य साधना न हो निश्चय, साध्य क्या है साधना क्या है इसके बारे में कोई निश्चितता होती नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते ओनली फोर बुक्स, प्रभुपाद जी का स्लोगन था फोर बुक्स आर इनफ, चार किताबें सफिशियंट है। कौन से, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं चार किताब चैतन्य भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता और चैतन्य शिक्षामृत। चैतन्य शिक्षामृतम की चैतन्य चरितमृत, ये चार ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे ठीक से तो फिर और किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें है। और बाकी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत थप्पी लगा देते लेकिन कोई किताबों को पढ़ते होंगे, एक प्रकार का रूप गोस्वामी कहते नहीं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना है भी ठीक नहीं है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। और आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे जो व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए, कपटता नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑर्डिनरी डीलिंग। अगर हम सरल हो हमारे व्यवहार में तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बलि महाराज के गुण था आर्जवम, कि जैसे आनंद आ गए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि देखो इनको परीक्षा करेंगे कौन है। कभी कभी भक्तगण, एक भक्त कह रहे थे, वो कह रहे थे उनके कोई मित्र है, वो भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका एक दुर्गुण है, तो क्या करते हैं वो डिटेक्टिव गिरी करते हैं दूसरे भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है, देखने के लिए क्या खाता है क्या नहीं। जैसे रामचंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी क्या करते थे, दूसरों को खिलाते थे खूब और बाद में उनकी निंदा करते थे, देखो इतना खाता है चावल भर भर के खाता है, 10-12 चपाती खाता है, तो उनकी निंदा करना, तो ये क्या हो गया, एक कपटता हो गया कि पहले आप खिला बाद में गाली दो, पहले दान दो बाद में गाली दो कि इसका ऐसा हो रहा है। तो यहां जब वामनदेव के पास, वामनदेव आ गए बलि महाराज के पास शुक्राचार्य ने कहा संभाल के रहना, तो परंतु बलि महाराज ने ऐसा नहीं किया, तो सरल होने के कारण भगवान को बहुत प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी लेते हैं एनी कंडीशन, जैसे हम कल चर्चा सुबह चर्चा कर रहे थे कि उनको एक महीने के लिए सत्य बोलना था और उन्होंने पालन किया और उसका कितना बड़ा लाभ हो गया। इसलिए अगर हम प्रामाणिक रहेंगे, जैसे एक बार इस्कॉन की एक बहुत फेमस बुक डिस्ट्रीब्यूटर थी, उसका नाम था गीत गोविंद माता जी, वो जापानीज थी, हम लोग सेमिनार ले रहे थे, वो बता रहे थे कि एक बार पुस्तक वितरण करते करते उनको वैलेट मिल गया जापान में, और उसमें किसी अमेरिकन व्यक्ति का था, उसमें $2,000 थे उस वैलेट में। उन्होंने सोचा अभी क्या करना चाहिए, इतना पैसा है, वो खोलकर देखी और उसमें कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड था, ऐसे ऐसे व्यक्ति का पैसा, तुरंत जाकर मंदिर में फोन करने लगी। वो ऐसे सोच सकती थी कि इसको कृष्ण के लिए मैं उपयोग कर सकती हूं। उन्होंने $2,000 लेकर उन्होंने भेंट के रूप में उनको $500 दिया मंदिर के लिए। $500 आप सोच सकते, अरे $2,000 मिलते थे, $2,000 कम हो गए, लेकिन सोचो जाकर कितने लोगों को कहेगा कि हरे कृष्ण भक्त बहुत प्रमाणिक है, वो प्रमाणिकता से व्यवहार करते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों का इतना विश्वास होता है, हम लोग जगन्नाथपुरी में गए थे रथ यात्रा के लिए और हमें कीर्तन करने के लिए बहुत सारा ट्रॉली बनाना था साउंड सिस्टम का, और गोपीजन वाले प्रभु किसी दुकान में चले गए, उसके पास नया भोंगा था, चार बड़े बड़े भोंगे और बड़ा स्टूडियो था, कम से कम 25,000 का स्टूडियो, चार भोंगे एक एक के 2,000-3,000 रुपए, जगन्नाथपुर में दो दुकान खोलाए तो बड़ा अमीर नहीं होगा। उसने भक्तों को देकर कह दिया ठीक है लेके जाओ, डिपॉजिट है, आपसे क्या डिपॉजिट लेंगे, आप तो भक्त हो। तो उसको कहना पड़ा कि ऐसा मत करो क्योंकि आपका विश्वास चला जाएगा, अगर कोई दूसरा आकर आपसे गलती से आपका लूट लेगा तो आपका सब भक्तों के प्रति जो विश्वास है वो तो नाश हो जाएगा। इसलिए प्रामाणिकता तो भगवान को बहुत प्रसन्न देने वाला है। इसलिए रूप गोस्वामी इसको भी एक भक्ति का अंग करके स्वीकार करते, ऐसे उसको छोड़ देना है तो क्या ठीक है, कृष्ण के लिए सब कुछ नहीं, तो साधारण डीलिंग में हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे 19वां जो नियम है, जो अंग है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान की अर्च विग्रह के साथ जब सेवा अपराध होती है उससे बचना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद जी इस खास जो अंग है भक्ति का उसके लिए एक अलग अध्याय बनाया है। आठवां अध्याय है वो सेवा अपराध के बारे में। केवल एक 19वां अंग है क्योंकि भगवान की सेवा करते समय, अर्चना करते समय क्या सेवा से बचना चाहिए, ये आगम में कहा गया है। ये मत्पुर सामृत सिंधु का भाग नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी को उल्लेख करते हुए सारे जो सेवा अपराध और नाम अपराध के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। अगर इन अपराधों से नहीं बचेंगे, कभी कभी लगता है ठीक है अपराध तो करने से, हरि नाम जप करने से क्या होगा, हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कहा गया पद्म पुराण में। अगर किसी के हाथ में सेवा अपराध हो जाती है, हरि नाम करने से क्या होगा, वो सेवा अपराध से मुक्त हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा सेवा अपराध हो जाता है, वहीं फिर नाम अपराध बन जाता है, और जब नाम अपराध हो जाता है फिर बचने के लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं होता। तो अगले समय हम जब मिलेंगे, जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू होगा, तब हम भक्ति रसामृत सिंधु आगे चालू करेंगे। उस समय जो बाकी के जो अध्याय हैं 8, 9, 10, 11, 19 अध्याय तक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण भगवान, आपने जैसा बोला कि देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, और उधर का जो मैनेजमेंट रहता है या कोई पूजा करने वाला अर्चक रहता है, तो उनकी गलती हो तो उधर हमें देवी देवताओं को दूसरी तरफ से दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो मेरा भी ऐसा भारत है, मैं गोवा में हमारा कुंभराज के मंदिर में जाता रहता हूँ,
शांता दुर्ग
मेन प्रभारी, महालक्ष्मी और जामदायन में दामोदर मानते हैं।
अच्छा अच्छा,
शांता दुर्ग के मंदिर महालक्ष्मी है और जामदायन में दामोदर है। मेरा दामोदर जो है वो पिंडी है, गुरु वो पंचकोण का जो पिंडी है और ऊपर पाप उसका फ्लैट है और सामने गुरु है और पिंडी के बगल में लक्ष्मी नारायण है। तो मुझे अभी उसको बहुत मना करते हैं, तो उसके जाके शनि का पूजा करते हैं, मगर मुझे इतनी छोट है उधर कि उधर जाने के बाद मुझे देवी देवताओं के बारे में थोड़ी श्रद्धा बढ़ी। उसके पहले तो श्रद्धा आई शनि साईबाबा के पास जाता था, मगर से उधर जाने उधर श्रद्धा नहीं, और मैं कई सालों से जाता था, मुझे अनुभव भी अच्छा नहीं होता था, ये नहीं कि मुझे कुछ मिलता था, मैं कभी कभी टोटल सरेंडर करके नहीं जाता था उधर देखता था वो। तो अभी मुझे मेरे एक दोस्त सीनियर वैष्णव है, वो बोलते हैं इसको भक्त है सीनियर वैष्णव, वो बोलते हैं मुझे मना करते हैं कि क्या तुम सीनियर का पूरा कर जाओ, मैं उनको भी कुछ जान नहीं देता हूँ, मैं उधर उधर मैं जाना बहुत कम हुआ है, मैं तो हर साल दो तीन बार जाता था, मैं त्योहार में मिलता था, त्योहार में समझिए पागलों का जैसा ही मिल रहा होता है, तो वो मैंने मना किया नहीं, मगर कभी कभी दिन में आता हूँ जाके आता हूँ। अभी मुझे आप ऐसा नहीं यानी उपदेश के लिए कि मैं क्या करना चाहिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें जो मार्गदर्शन दिया है उसका पालन करना चाहिए। एक तो जानना चाहिए कि कौन, ये तो आप तो दीक्षित है, आप जानते हो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और विशेष रूप से एक कष्ट करके देवी देवताओं के पास जाने की कोई जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप अपने कुछ काम के लिए जाते हो और वहां मंदिर है और आपको पहले से वहां से आप उनके कारण, कभी कभी ऐसा लगता है, मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं, हम हर रोज बचपन में जन्माष्टमी के दिन दूसरे किसी की जयंती मनाते थे, उसी समय उनका जन्म होता था और इधर जाकर हम लोग शिव जी का मंत्र करते थे, शिव जी की भी मूर्ति नहीं थी इधर, किसी एक नाथ संप्रदाय के मंदिर था, उधर हमें मंदिर में जाकर सेवा करने का भी मौका देते थे वहां के जो अर्चक, हम लोग उनका अंगारा बांटते थे, फिर इधर कीर्तन करते थे, तब से हम लोग करताल बजाते थे, लेकिन एक भी कृष्ण का भजन नहीं था। जन्माष्टमी के दिन हम दूसरा कुछ गाते थे, लेकिन वहां ही हमें पहली बार इस्कॉन के भक्तों का संग हो गया। पहली बार उधर ही हमने हरे कृष्ण महामंत्र को जप किया था। तो जब मैं वहां जाता हूं, मैं खास विशेष रूप से नहीं जाता हूं, हम देखते कि हमारा और वो संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां से कुछ बीज मिल गया। उसी मंदिर में जाते थे इसलिए वहां इस्कॉन के भक्तों का संपर्क हो गया, तो हम प्रणाम कर लेते बस। तो वैसे ही आप हर एक जीव को हमको प्रणाम करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट गौरव करना चाहिए। तो जिससे आपको कुछ ऐसा आध्यात्मिक अनुभव आया हो तो उसमें गौरव रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन विशेष प्रयास लेकर वहां जाकर कुछ सेवा करना ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना उसके प्रति विश्वास हो तो आप अपने दूसरे भक्तों को कहना चाहिए कि मैं जाता हूं उधर, मैं जानता हूं कि ठीक नहीं है लेकिन मैं जाता हूं। कम से कम इतना तो क्लियर करना चाहिए, दूसरे वैष्णव को ये क्लियर करना चाहिए कि मैं जाता हूं क्योंकि ऐसा ऐसा है, जाने की जरूरी नहीं है लेकिन विवश होकर मैं जाता हूं। कभी कभी हम देखते हैं संकष्ट के समय जब हम लोग सिद्धिविनायक के सामने किताब वितरण करते थे तो अचानक कोई भक्त सामने आ जाते थे, देखकर हम तो डर जाते थे। हाथ में माला है, तिलक है, लेकिन सिद्धिविनायक का दर्शन के लिए लाइन में खड़े दो दो घंटे के लिए, उतना ही बाहर आकर अगर वो किताब वितरण करेंगे हम सोचते कि ज्यादा प्रगति करेंगे, लेकिन अब ये क्योंकि ये सब प्रगति का अलग अलग स्तर है, तो इसलिए कम से कम इतना तो उनको कहना चाहिए जो आपके आपके भक्त कहते देखो मेरी ऐसी स्थिति है, मैं जानता हूं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये तो जानना चाहिए आपको। और ऋग्वेद में कहते हैं शास्त्र में, ये तो क्या गोपाल भट्ट गोस्वामी अर्चना सिद्धि में कहते हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं स्वमातरम परित्यज्य, तो क्या जो अपने माता को त्याग करके किसकी पूजा कर रहा है, जो चंडाल या पिशाची की पूजा कर रहा है, ऐसा कहा गया है। ये शास्त्र का वचन है, पुराण का वचन है, उसको तो हम नकार नहीं सकते। तो देवी देवताओं की निंदा नहीं कर रहे बल्कि जो उपासक है जिनकी वृत्ति है गलत वृत्ति के कारण उनके प्रति इतना कड़वे कड़वे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इतना ही आपको कह सकते हैं कि अगर आपकी तीव्र इच्छा है वहां जाने के लिए, जैसे कि अगर कोई भक्त बन गया है कंडीशन के कारण वो जाकर न्यूज पेपर पढ़ता है, वो जानता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई क्रिकेट देखना बंद कर दिया लेकिन कंडीशन के कारण खास करके भारत पाकिस्तान चल गया तो फिर विवश होकर इधर चला जाता, लेकिन वो जानता है कि गलत है। वो ऐसा नहीं कहता कि पहले मैं करता था इसलिए मुझे अच्छा लगता था, नहीं, वो जानता है कि गलत है। वैसे ही जब हम देवी देवताओं के मंदिर में विवश होकर जाते हैं तो हमको जानना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी आगे कहेंगे भक्ति रसामृत सुनि में रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की पूजा करने के पहले गणपति की पूजा होनी चाहिए, सबका कान खड़े हो जाएंगे। एक रूप गोस्वामी कहते रहे हमको सब बंद करा दिया, रूप गोस्वामी ने दिया इधर। तो प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था, प्रभुपाद जी अब रिटर्न भक्ति रसामृत सिंह अपने भक्ति रसामृत सिंह ने लिखा गणपति की पूजा करनी चाहिए, तो हम गणपति की पूजा चालू करें। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, सेंड एवरी मंथ $1,000 देन यू कैन स्टार्ट वर्शिपिंग गणपति। हर रोज के लिए $1,000 भेजते रहो फिर आप गणपति की पूजा कर सकते हो। यानी कि प्रभुपाद ने क्लियर कह दिया कि आपको अलग रूप से उनकी सेवा करने की जरूरी नहीं है, एक विश्वास हमें होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण की उपासना करने से, जब गुरु की उपासना करने से हमने सुबह देख दिया कृष्ण का वचन है सर्व देवो नयो गुरु, गुरु क्या है, सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करने के बाद उनका जितना टोटल हो जाता है उसके समान भगवान के वचन है। तो इसलिए ये आपको उनको कहना चाहिए, फिर से निष्कर्ष यही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये आपको पूरी तरह से बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, हृदय के स्तर पर जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप विवश हो आपके प्रीवियस कंडीशन के कारण, तो दूसरों को कहना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है परंतु मैं विवश हूं, ताकि लोगों में कंफ्यूजन नहीं आएगा। कि लोग नहीं करना चाहिए कि देखो हरे कृष्ण का भक्तगण खास करके, अरे उनका भिक्षा भी हो गया, तिलक भी लगाते, लेकिन फिर भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं। हमें देवी देवताओं से कोई दुश्मनी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे, अगर रंगनाथ जाते समय कुछ देवी उनका मंदिर आ गया चले गए वहां कीर्तन करते थे, तो सारे जितने भी शिव जी के मंदिर में चले गए थे, जहां जो कौन सा मंदिर है, जो दुर्गा का मंदिर है, मंदिर है ना मीनाक्षी, वहां भी चले गए, सब जगह में जाकर कैसे जाकर जाते थे, देकर के कृष्ण के प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा किया, प्रणाम करते थे देवी देवताओं, लेकिन खास प्रयास नहीं करते थे, अपने रास्ते से अलग होकर वो किसी मंदिर में नहीं जाते थे। खास करके हम देखते हैं जो भारत में, खास करके महाराष्ट्र में तो दिखाई देता है, खास करके महाराष्ट्र में दिखाई देता है कि जो साधु पुरुष है जिन्होंने कुछ सिद्धि दिखा उनको भगवान बना देना। अभी कौन से शास्त्र में शिरडी भगवान है करके, कोई शास्त्र में है? एक साधु थे आयुधित थे, उनको कुछ सिद्धि आती थी, लेकिन लोगों ने उनको भगवान बना दिया। तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा कलेक्शन वहां होता पैसा, तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा पैसा वहां इकट्ठा हो जाता। तो भारतीयों का दुर्भाग्य है जो वैष्णव होकर भी हमारे मध्य संप्रदाय के भक्त है, उनके पिताजी हमको मिले थे, वो कहते थे हम लोग जहां मध्य संप्रदाय के लोग, वो कह रहे थे हम लोग रेगुलरली शिरडी जाते थे, नासिक छोड़कर, नासिक में भगवान स्वयं राम खड़े हुए हैं लेकिन गाड़ी रुकती नहीं नासिक में, सीधा शिरडी चली जाती है। तो इसलिए जानना कि कौन भगवान है। साधारण लोगों को बम्बे में एक है, इतनी बड़ी मुच्छी है उसकी, सिगरेट फूकता था पहले, शराब पीता था, अब वो भगवान बन गया, लोग उसकी पूजा करते हैं। शक्तिदाता, जो शक्ति देने वाला है, लोग लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं। और अपना घर बदलता रहता, पहले वो एक छोटे घर में रहता था, उनके भक्तों ने उनकी सब पूजा करने के कारण उसका घर बदल गया। अगर लोग अच्छा बोलते हैं, रघुपति प्रभु कहानी बता रहे थे, हम जानते इस व्यक्ति को, तो बोलने में बहुत चतुर थे, इतना मीठा वाणी था उनका, फिर वो अलग हो गए, इस्कॉन से अलग हो गए, उन्होंने अपना मंदिर खोल दिया, गृहस्थी है और अपना मंदिर खोल दिया, और मीठा बोलने के कारण लोग उनके पास आने लगे, उनको खूब पैसा देते थे, बाबा जी प्रणाम, और उनको 500 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया। फिर ऐसे एक व्यक्ति आने लगे, एक महीने तक वो आने लगे, दो दिन में एक बार, तीन दिन में एक बार, और उनको 500 हजार देते थे। तो उनसे पूछने आप क्या करते हो, थोड़ा नजदीक हो गए, तो उनके अच्छे शिष्य बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनी लेंडिंग करता हूं, पैसा मैं देता रहता हूं। तो जो साधु, उन्होंने कहा मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आप इसको लोगे क्या? उन्होंने कहा कितने पैसे आपके पास? उसने कहा 15 लाख रुपए। अगर जो प्रचार करे उनके पास स्वयं के पैसे कहां से आ गए, सब तो भगवान का होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इतना छोटा सा नहीं करता हूं, इतना छोटा लेंडिंग नहीं करता हूं, तो कितना करते हो? कम से कम 40-50 लाख रुपए। उसने कहा ठीक है, मेरा वहां जितने भी है, उन्होंने 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए उसको दे दिया। कोई पावती नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है। फिर वो लेकर गए और एक महीने के बाद एक महीने का जो इंटरेस्ट है उनको दे दिया। फिर अगले महीने से गायब हो गए। फिर जब वो मिले, उनको पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा जिसको मैंने पैसा दिया था वो डूब गया, मर गया। यानी कि उसने जो लोग भगवान समझते या उनको बड़े गुरु समझते उनको उसने फंसा दिया। तो भारत का दुर्भाग्य है कि बिना जाने अगर कोई थोड़ा सा जादू दिखा लेता है उसको भगवान के उसमें डाल लेते। इसलिए प्रभुपाद जी को किसी ने आकर कहा, स्वामी जी मेरे भगवान मेरे गुरु कृष्ण। प्रभुपाद जी ने कहा क्यों कृष्ण? क्योंकि उनके संपर्क में आकर मैंने शराब छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैंने तो हजार लोगों को शराब छोड़ाया, तो मैं आपके गुरु से बड़ा भगवान हूं। अगर एक व्यक्ति से शराब छोड़ने के कारण वो भगवान है तो मैंने ऐसे हजार लोगों को मुक्त कर दिया व्यसन से, तुम्हें भगवान हो गया क्या? प्रभुपाद एक ही थे जिनको भगवान कहने पर गुस्सा आया था। कई भक्त उनको भगवान कहना चालू कर दिए थे, प्रभुपाद जी जाकर उनको डांटे। उन्होंने इस काम से उनको बाहर निकाल दिया, बोला आप रहने के लिए योग्य नहीं हो, आपने गलत प्रचार किया। और भारत में ऐसे कोई है अपने आप को भगवान कहलाते, उनको एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य उनको सामने से पकड़कर बोले आप भगवान हो? ये वैष्णव सामने इतना बड़ा वैष्णव सारे शास्त्र को जानता है, अगर भगवान कहेगा तो ये तो कैसे भगवान है वो भी सिद्ध करेंगे। और भगवान अपने आप को कहने के कारण क्या परिणाम होता है वो भी बताएंगे। तो समझ गया कि नहीं उनके सामने नहीं कह सकता। उन्होंने कहा नहीं मैं भगवान हूं, मेरे भक्तगण कहते मैं क्या करूं, नहीं मेरे भक्तगण कहते मैं भगवान हूं। तो यानी कि वो स्वीकार कर रहा था कि भक्तगण कह रहे थे, यानी कि भक्तगण भी क्या है तो भी फंसे हुए और उसको फंसा रहे। इसलिए हम कल चर्चा कर रहे थे अगर कोई प्रणाम करने के लिए योग्य नहीं है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है और उसको पूर्ण पुरुषोत्तम करके अगर हम उनकी पूजा करते उनका भला नहीं है, उनकी भलाई नहीं होगी, पूजा करने वाले की भलाई नहीं होगी और जो पूजा स्वीकार कर रहा है उसकी भी भलाई नहीं होगी। इसलिए खास करके जो वैष्णव है जो दीक्षित भक्त है उनको धर्मांध नहीं बनना, उनको फनेटिक नहीं बनना। देवी देवताओं की हमें निंदा नहीं करनी है बल्कि हमारा जो सिद्धांत है उसको ढीला नहीं बनाना है, उसको लूज नहीं करना है। जैसे एक बार हम नागपुर गए थे वहां बहुत सुंदर दिख रहा था राधा कृष्ण का, कोई बड़े प्रोफेसर रिटायर्ड थे तो राधा कृष्ण की पूजा कर रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे नीले कलर के कृष्ण थे, राधा रानी सोने की कलर की थी, दिन में 6 बार भोग लगा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब नजदीक चले गए तो जैसे नजदीक आए पूरा मन हमारा निराश हो गया, पीछे आ गया, क्योंकि उस ऑल्टर के अंदर जहां राधा कृष्ण के बीच में उन्होंने एक ऐसा पाखंडी है उसका फोटो रखा था जो अपने आप को भगवान मानते। जैसे कि अगर कोई सुंदर व्यक्ति हो उसके अंदर वाइट लेप्रेसी हो गया तो क्या होगा, उसका पूरा जो सौंदर्य है वो खराब हो जाता है। बहुत बुरा लगा कि राधा कृष्ण की पूजा करें लेकिन क्या रखे इधर एक जो अपने आप को प्रभुपाद जी इतने गुस्से होते थे जो अपने आप को भगवान कहते थे, तो कहते तो ठीक है अगर वो भगवान है मैं उसके मुंह पर लात मारता हूं, करने दो उसको जो करना है, अगर मैं साधारण और भगवान है उसके मैं मुंह पर लात मारता हूं उसको करने दो, मुझे जिस नरक में वो डाल सकता है डालने दो। लेकिन जो भगवान नहीं है जो अपने आप को भगवान कहते दे, देवी देवताओं को तो छोड़ दो, ये तो कम से कम भगवान के निजी प्रतिनिधि है। इसलिए भारत का दुर्भाग्य दुबामृत स्वामी कह रहे थे कि टेररिज्म मतलब क्या, हम कहते बहुत सारे टेररिस्ट बढ़ गए, तो कह रहे थे टेररिज्म यानी कि जो साधारण व्यक्ति को भगवान करके स्वीकार करना। इसलिए भारतीय लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं जो साधारण लोगों को भगवान करके उनकी पूजा भी करते हैं। लाखों लोग तो गंगा में उसका दर्शन, अभी दर्शन क्या है उसका, अगर उसको मुख देखकर गंगा में स्नान करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तांत्रिक सन्यासी को देखा कपड़ों के साथ नित्यानंद के साथ में गंगा नदी में कूद पड़े, मतलब उन्होंने उसकी मुंह देख लिया। लोग 5,000 रुपए जाकर उसका दर्शन भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यहां गौरमिता खड़े हुए फ्री में दर्शन दे रहे सबको, राधा गोपीनाथ है, राधा राजगुरु, राधा गुरुवारी है, प्रेम से सबको दर्शन, केवल दर्शन ही पूरा भोजन भी देते। ऐसा कौन सा मंदिर है जो आपको खाना भी मिले, जो आप नृत्य भी करो और प्रेम से उनका दर्शन करो और कोई दर्शन फीस नहीं हो। तो इसलिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोग कहते देखो भारत में इतना धर्म के कारण सब कुछ खराबी है, गरीबी है, नहीं, अधर्म के कारण। जो धर्म को अधर्म अधर्म करके स्वीकार करते तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए खास करके जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी जो निष्ठा है एकाग्र होनी चाहिए, साथ साथ निंदा नहीं होनी चाहिए देवी देवताओं की, उनकी भी निंदा नहीं करनी है, हमें प्रचार करना ठीक ठीक से। तब अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, श्री भक्ति रामानुजाचार्य कहते हैं भक्तों के आलसता के कारण, शिष्यों के आलसता के कारण, सिद्धांत जाने में आलसता करने के कारण क्या हो जाता है, तो भेद नहीं कर सकते हैं कौन असली वैष्णव है, कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, उसका भेद नहीं कर सकते। बड़े मध्वाचार्य रामानुजाचार्य इतने स्ट्रांग वैष्णव थे, अभी उनके अनुयायी तो भेद नहीं कर सकते। हम एक बार किसी वैष्णव के घर में गए थे, उनके यहां जितने भी देवी देवता है, हजारों देवी देवताओं का चित्र था और बीच में कृष्ण का भी फोटो था। फिर से हम कह रहे हैं देवी देवताओं की निंदा न करना इसका अर्थ नहीं कि उनकी पूजा करना, पूजा करने में और निंदा न करने में बहुत बड़ा अंतर है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अगर आएंगे सामने से प्रणाम करेंगे, जैसे चलते चलते अगर कोई सामने से आ गए हम उसका निग्लेक्ट नहीं करते, उनको प्रणाम करेंगे, वैसे हमारे लिए देवी देवता है। तो ये महत्वपूर्ण होगा। आपका उत्तर का, आपका प्रश्न का जवाब दूंगा।
इसमें मैं एक आपको क्लियर थोड़ा मेरे तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, जो दामोदर मंदिर बोल के मैं जाता हूँ, नाम तो दामोदर कृष्ण का है मगर अंदर पिंडी है, वो सही बात है। मगर उधर गोवा में हर एक मंदिर में कमल प्रसाद लगाने का एक आदत रहती है, लोग जाके कोई प्रश्न पूछते हैं तो भरजी फूल लगाता है, जो फूल होगा ऐसा करता है, वैसा करना चाहिए, मैं वो करता था पहले, आजकल छोड़ दिया, 3 साल से मैं कुछ करता नहीं। जब से इसका मैं आया हूँ,
मुझे आपकी निष्ठा बहुत बढ़ी है कृष्ण के प्रति, अच्छा
छोड़ दिया। मगर उधर एक देखा था, पहले पुरोहित था वो जो उधर लिंग प्रसाद लगाने के लिए बैठता था, तो बाहर अगर कोई बच्चे खेलते थे तो उधर प्रसाद नहीं होता है, भगवान प्रसाद नहीं देता है, यानी दामोदर में प्रसाद नहीं देता है बल्कि किसी को बैठता था, फिर वो बच्चों को उधर खेलने के मत बोले अगर बगल में जाओ बोल के, उसकी भावना नहीं थी। द्वापरी में कृष्ण भगवान जैसे गोपाल के साथ खेलते थे, मेरी तरफ से दामोदर अंदर नहीं रह के बाहर जाके बच्चों के साथ खेलता है बोलते उसकी भावना थी। और दूसरा एवरेज में अगर के अंदर बहुत सारे से जाता हूँ, जो गैया जो है जमा और बैल और गैया है, मगर सामान्य अश्वत्व रख से कितने भी बारिश होने दिए ये सब आके उधर सो जाते हैं। ये मुझे बहुत सालों से लगता है, मैं पहले अंदर जाके मैं उधर पूजा में अभिषेक करता था, सब करता था, उधर तो इतना स्ट्रिक्ट है, स्नान करके फिर गीला कपड़ा पहन के यज्ञ का बसल के फिर पंचामृत भी सब लेके अंदर जाना पड़ता है, वो करके इतना करता था, मगर आजकल मैं करता नहीं उधर जाके, सिर्फ बाहर से प्रणाम करता हूँ। और फार्मा में जो रिसीट पे सेवा का कुछ तो ये भी लक्षण देता हूँ और आता हूँ उधर जाके। गलत हो
जैसे, हाँ जैसे तिरुपति अपने उड़पी में चंद्रमौलेश्वर मंदिर है, आपने देखा होगा चंद्रमौलेश्वर मंदिर है, तो यहाँ यहाँ के जो मध्य संप्रदाय के लोग कहते हैं चंद्रमौलेश्वर है, लेकिन जो मध्य संप्रदाय के लोग कहते हैं कि चंद्रमौलेश्वर के भगवान कौन है, उनके हृदय में कौन रहता है, कृष्ण ही रहते हैं। इसलिए हम वैष्णव के रूप में शिव जी की पूजा कर रहे हैं जिनके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं, वैसे अगर वो दामोदर शिव जी के लिंग में बसे हुए हैं और उनकी पूजा उस दृष्टि से कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। जैसे यहाँ निकले में एक मंदिर है, आप जानते होंगे, प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो उन्होंने उल्टा कर दिया है। शिवलिंग में उन्होंने क्या किया, कृष्ण को शिवलिंग में बिठाया। अंदर मंदिर का जो डिजाइन है वो शिवलिंग है और उसमें कृष्ण, तो उनका उद्देश्य यह है, उनका उद्देश्य यह नहीं कि कृष्ण परमात्मा के रूप में शिवलिंग में बैठे हुए, उनका उद्देश्य यह है कि सब कुछ शिवजी से आता है, शिवजी स्रोत है। इसलिए कई लोग ऐसा हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं गणेश उत्सव में गणपति को व्यासदेव बनाते हैं, इतना एक एक्सट्रीम होता है, गणपति रासलीला कर रहे हैं और साथ साथ गणपति क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ऐसी प्रकार की जो पूजा है ये विडंबना है। वो तो जैसे अन्य धर्मीय मूर्तियों का खंडन करते हैं तो उसी प्रकार से वो वैदिक धर्म के होकर वो ये भी नहीं जानते कि कैसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा और उनको देखने के लिए जाना है, ये बहुत बड़ा उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी सब कर रहे हो। गणपति को मैंने देखा था, अभी तक मैंने बोलता बेंगलुरु में देखा था किसी के घर में, वो भी जैसे ब्राह्मण परिवार के थे, विष्णु की पूजा करने वाले थे, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने खोलकर देखा। मेरे गुरु जी को, उनके बहुत बड़े गुरु थे और उनका बच्चा सन्यासी बन गया था, उन्होंने अपना सारा पेंटिंग्स दिखाया और उन्होंने कहा ये जो पेंटिंग्स है मेरे गुरु को इतने पसंद है, उन्होंने अपने गुरु का भी चित्र दिखाया। और एक का गणपति का नाम था मोरेश्वर गणपति और दूसरे का नाम था कपिलेश्वर गणपति। मोरेश्वर में भी विकेट कीपिंग कर रहा है, एक मोरे करके एक विकेट कीपर थे भारत के उस समय, मोरेश्वर गणपति जो भगवान विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और कपिलेश्वर गणपति ने की भगवान गोपिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और वो कह रहे कि हमारे गुरु को सबसे ज्यादा पसंद आया। देखो मैंने देखा नायर देवामृपी थे, हमको हंसना चाहिए, रोना चाहिए, भागना चाहिए, उसके प्रति गुस्सा करना चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कह रहे मेरे गुरु को बहुत पसंद है, एकदम उनके फेवरेट पिक्चर है। यानी कि हम जब भगवान को ऐसे नीचे खींचते, देवी देवताओं को ऐसे निंदा करते हैं तो पूजा नहीं है, तो अनधिकृत होने के कारण न तो पूजकों का भला होता है। हमारा ये पूरा अनुभव है कि गणपति वहां आते नहीं है, पंडाल भी जहां फिल्म के गाने लगे हो, पंडाल के नीचे मांस का पार्टी चलता है, अगर जुआ खेलते तो भगवान गणपति आएंगे कैसे, कैसे लोगों के अंदर श्रद्धा होगी। जो इंटेलेक्चुअल लोग है, जो सात्विक लोग है, वो तो ऐसे क्यों धार्मिक बनेंगे, वो कहेंगे तो सब पाखंड है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रमुख उद्देश्य यही है कि साइंस साइंटिफिक दृष्टि से लोगों को सिद्ध करना और शुद्धता के साथ प्रचार करना, तो लोग जो इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, जो देखते कि इसमें सारा पाखंड है, वो इसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए आप अगर दामोदर भगवान है, अगर पुजारी की ऐसी भावना हो, बहुत ही भावना है, वो कह रहा है कि बच्चे लोग को धोखा दे रहा है क्योंकि भगवान दामोदर यहां से चले जाएंगे। जैसे जो आपके जो पिछले आप तो अभी शुद्ध वैष्णव है, गौड़िया वैष्णव है, जो जीएसबी लोग है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, तो भी वैष्णव है। अगर आप उनके गणपति है जहां दादर में सबसे बड़ा गणपति होता है उनका, साधारण लोग जानते नहीं है, वो आते हैं उनको लगता है हम गणपति की पूजा करें, लेकिन अर्चक लोग जानते हैं वहां जितनी गणपति की पूजा होती है उससे ज्यादा अंदर शालिग्राम है। शालिग्राम के लिए बहुत सुंदर उन्होंने आसन बनाया है सोने का, और सारा भोग पहले शालिग्राम को जाता है। शालिग्राम के लिए सोने के लिए बेड है, उनका भोजन का आसन है, और सारा भोग का जो थाली है वो एक रथ के साथ चला जाता है अंदर। शालिग्राम को भोग लगाते हैं और शालिग्राम को भोग लगाने के बाद वो गणपति को शालिग्राम का जो झूठा प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन 99% लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस प्रकार से केवल गणपति शालिग्राम का ही प्रसाद खाते हैं। लेकिन वो लोग झगड़ा करते कि हमारा गणपति बड़ा है और तुम्हारा शालिग्राम छोटा है। नहीं, शालिग्राम छोटे होने पर भी गणपति उनका ही प्रसाद खाते हैं, ऐसा होता है। और ये सबसे बड़ा, और वो जो गणपति है वो शास्त्रोक्त उसकी पूजा की जाती है। यहां फिल्म गाने नहीं लगाते हैं, जो अर्चना करने वाले जो पुजारी सभी मंत्र को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कैसे गणपति को प्रसन्न करना है। जैसे जगन्नाथपुरी में विमला देवी है, वो खुद कुछ नहीं खाती है, वो केवल कृष्ण का ही, जगन्नाथ का ही प्रसाद खाती है। जैसे दक्षिण भारत संप्रदाय के लोगों ने ऐसा ही किया था, उन्होंने सारे जितने भी कर्नाटक में देवी देवताओं के मंदिर थे वहां शालिग्राम रख दिया। तो वहां अर्चक लोग पहले शालिग्राम को खिलाते थे और उसका प्रसाद दुर्गा को, चामुंडी को और जितने भी देवी देवता है उनको खिलाते थे। इसलिए इनडायरेक्टली क्यों जाना है, सीधा शालिग्राम या कृष्ण की पूजा करो, देवी देवताओं की करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण देखी जाए, समय हो गया 7:30। तो एग्जाम हमारे कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी भक्तर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम संकीर्तन की प्रभुता देखी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें श्री गोविंद धाम श्री श्री राधा गोविंद टेप मिनिस्ट्री इस्कॉन निगड़ी पुणे महाराष्ट्र।